अंतरा के आने से सहगल निवास में रौनक लग गई थी। लगभग सारा दिन अन्वय, अंतरा, फलक, अक्षय और आहाना की महफिल जमी रही थी। आहाना और अक्षय तो शांत रहने वालों में से थे, पर अंतरा, अन्वय और फलक तीनों ही शैतान के साथ बातूनी भी थीं, और तीनों ने मिलकर खूब रंग जमाया था उस दिन। आहाना को तो काम से फुर्सत ही नहीं थी। जब उनके पास बैठती, गुस्से से खीजी हुई रूपाली जी कोई नया काम उसके सर पर लाकर पटक देती थी। अक्षय कुछ कहता तो गुस्से से और भड़क जाती थी। ऐसे में अंतरा के सामने कोई हंगामा ना हो, इसलिए आहाना उसे बोलने से रोक देती थी, और वो बस नाराज़गी भरी निगाहों से उन्हें घूर कर रह जाता था। जब ये सब उससे और देखा नहीं गया तो वो वहाँ से उठकर चला गया। ये पहले भी होता था। अक्षय की ज्यादातर रविवार को छुट्टी होती थी। वो छुट्टी लेता था ताकि आहाना संग वक्त बिता सके, पर उस दिन उसके पास घर से जुड़े इतने काम होते थे कि मुश्किल से दोनों को साथ में कुछ वक्त मिलता था। ऐसे में अक्षय ने रास्ता निकाला और वो बाहर के सब काम सुबह में ही निपटाने लगा। आहाना भी अपने जितने काम होते थे आधे दिन में पूरे कर लेती थी, और फिर उन्हें एक दूसरे संग कुछ वक्त मिल जाता था। पर आज तो रूपाली जी ने हद ही कर दी थी। उन्होंने उसे एक मिनट चैन से बैठने नहीं दिया था। फलक को भी ताने मारकर अपने पास बुला लिया था कि आई है तो अपनी माँ से भी कुछ बात कर ले। तो पांच लोगों में से अंत तक वहाँ बस दो लोग ही बचे, अन्वय और अंतरा। खैर, जैसा भी था, सारे दिन सहगल निवास में हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंजती रही थी। ढेरों बातें हुईं। अभिजीत जी काम से लौटे तो उन्होंने भी अंतरा से बात की। रात के डिनर के बाद फलक और अन्वय ने मिलकर जल्दी जल्दी आहाना का सारा काम करवा दिया, और फिर सब इकट्ठे हुए बाहर लॉन में। अंतरा को दिन में अपनी जीजी और जीजू से ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला था, पर अब रात हो चुकी थी। रूपाली जी सोने जा चुकी थी। अब कोई नहीं था जो बेवजह के तंज कसे, उनकी बातों में अड़ंगा डाले, उन्हें डिस्टर्ब करे, उनका मूड स्पॉइल करे। अब सब हर बात से बेफिक्र फुर्सत में बैठे थे। एक बार फिर मस्ती मजाक, ढेरों दिलचस्प बातों और किस्से कहानियों के बीच बीच हंसी ठहाकों की आवाज़ वहाँ गूंज उठी थी, और अब की बार उस खनकती खिलखिलाहट में आहाना की हंसी भी शामिल थी। बीते दो तीन महीनों में अक्षय आज पहली बार उसे इतना खुश देख रहा था, और मन ही मन खुद को ये सोचने से रोक ना सका था कि क्या उससे रिश्ता जुड़ने के बाद से उसकी हंसी कहीं खो गई है। वो चाहकर भी उसे कभी सच्ची खुशी नहीं दे सका था। वो एटमॉस्फेयर नहीं दे सका जिसमें वो पली बढ़ी थी। उसे बेफिक्री भरी जिंदगी नहीं दे सका। उल्टा जिम्मेदारियों का बोझ उस पर लाद दिया, उसकी जिंदगी को संघर्षों से भर दिया। अपने तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद वो उसे रूपाली जी के गुस्से और नाराज़गी का शिकार बनने से रोक नहीं पा रहा था। जहाँ बाकी सब हंसी मजाक में गुम थे, वहीं अक्षय के दिमाग में अलग ही बातें घूम रही थीं। क्या हो रहा है यहाँ? रात के 12 बज रहे हैं, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक आई रूपाली जी के गुस्से भरी रौबदार सख्त आवाज़ सुनकर सब एकदम से चुप हो गए। वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया और सबकी निगाहें रूपाली जी की ओर घूम गईं। उनका गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर अंतरा ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए कोमल स्वर में जवाब दिया, आंटी जी, हम बातें कर रहे थे। अंतरा शांत थी, वहीं उसकी बात के जवाब में रूपाली जी उस पर गुस्से से भड़क उठी। बातें कर रहे थे या हल्ला मचाकर हमारे साथ साथ आस पड़ोस वाले सबकी नींद हराम कर रहे थे? ये कौन सा वक्त है बात करने का? सारे दिन में तुम्हारा मन नहीं भरा जो आधी रात में सबको यहाँ बिठा कर रखा है? तुमने क्या अपने तरह यहाँ बाकी सबको भी निकम्मा और नाकारा समझा हुआ है, जिनके पास करने को कोई काम धंधा नहीं और तुम्हारे तरह आधे आधे दिन तक बिस्तर पर पड़े रहें जो अपने साथ साथ सबकी नींद हराम कर रही हो? सुबह से अब तक का अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उन्होंने अंतरा पर उतार दिया था। अब तक जहां सबके खिले हुए चेहरों पर मुस्कान सजी थी, अब सबके लबों की मुस्कान कहीं खोसी गई थी और चेहरे पर गंभीर भावों भर आए थे। रूपाली जी का अंतरा से इस अंदाज में बात करना, उसे इतना सुनाना वहां मौजूद सभी लोगों को नागवार गुजरा था। हमेशा शांत रहने वाली आहाना के चेहरे पर भी गुस्से भरे भावों भर आए थे। अन्वय के चेहरे पर आक्रोश छलक रहा था। फलक नाराजगी से उन्हें देख रही थी। अक्षय, जो पहले ही आत्मग्लानी के बोझ तले दबा था, रूपाली जी का अंतरा के प्रति ये रवैया देखकर उसके सपाट चेहरे पर कई भाव उभर आए थे। इन सब से उलट अंतरा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने बेफिक्री भरे अंदाज में गंभीरता से जवाब दिया, हमने किसी को जबरदस्ती थोड़े ही बिठाया है, सब अपनी मर्जी से रुके हैं। हाँ, अगर आपकी नींद हमारे वजह से खराब हुई तो हम माफी चाहते हैं। आप आकर प्यार से हमें कह देती तो हम चले जाते यहाँ से। उसके लिए इतना गुस्सा करके आपको अपना बीपी बढ़ाने और हम सबका मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अंतरा थी वो। उसने आज तक किसी से डरना या हार मानना सीखा ही नहीं था और ना ही दिल में जहर भरकर लबों से शहद टपकाती थी। जो दिल में होता वही लबों पर होता था, और यहाँ भी उसने उनसे रिश्ते का लिहाज करते हुए सधे शब्दों में शांति से उन्हें जवाब दे दिया था। फिर उसने बाकी सबकी ओर नजरें घुमाते हुए कहा, आप सब अगर हमारे कारण अपनी नींद खराब करके यहाँ बैठे हैं तो जाकर सो जाइए, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चाहिए जीजी, हम कमरे में चलते हैं। आखिर में उसने आहना की ओर नजरें घुमाई और देखते ही देखते सब वहां से चले गए, पर जाते जाते आंखों में अपनी नाराजगी और चेहरे पर नागवारी जाहिर कर गए थे। रूपाली जी वहीं खड़ी रह गई थी। जीजी, तुम उतनी खड़ूस सास के साथ कैसे रह लेती हो? कितना हुक्म चलाती है, अपना गुरूर दिखाती है, ढंग से बात तक नहीं करती, बात बात पर ताने मारती रहती है, मुंह से शब्द ऐसे झड़ते हैं जैसे बम के गोले बरसा रही हो, किसी जेलर जैसे हंटर लेकर खड़ी रहती है। इतनी रोक टोक तो जेल के कैदी पर भी नहीं लगाई जाती होगी। हम तो इसे एक दिन में ही उनसे उकता गए। आपकी उस खड़ूस सास ने तो हमारा आजादी से सुकून भरी सांस लेना ही दुश्वार कर दिया। आप कैसे झेलती हैं इस शशिकला जैसे खतरनाक खड़ूस जेलर सास को? हम आपकी जगह होते तो एक बार में ही उन्हें ऐसा सबक सिखाते कि उनकी अकेले ठिकाने आ जाती। बहुत हुक्म झाड़ती रहती है सब पर। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया जो ऐसी चंडालन सास मिल गई। उन्हें हमारी जैसी बहू मिलनी चाहिए थी जो उन्हें असली मजा चखाती। कमरे में आते ही अंतरा ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल ली। सुबह से रूपाली जी का व्यवहार देख रही थी वो, और अब उससे और सहना नहीं गया तो सब बोल गई। आहाना, जिसका मूड रूपाली जी की बातों की वजह से खराब हो गया था, उसकी बातें सुनकर और चेहरे के भाव देखकर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। हमारे नसीब में था यहाँ आना और ऐसी सास का मिलना, तो पहुंच गए यहाँ, पर हम नहीं चाहते कि तुम्हें हमारी जैसी सास मिले और शादी के बाद तुम्हें उन सब मुश्किलों का सामना करना पड़े जिन्हें हमें सहना है। जब तुम्हारी शादी होगी तो हम अच्छे से जांच पड़ताल करवाएंगे कि उस घर में सबका व्यवहार हमारी बहन के लिए कैसा है। हमारे वक्त पर जो गलती हुई उसे हम कभी दोहराने नहीं देंगे। पति का अच्छा होना जरूरी है, पर उसके साथ साथ सास और घर के बाकी लोगों का व्यवहार ठीक होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता चुनेंगे जिसमें तुम्हारा होने वाला जीवन साथी तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा सम्मान करे, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जिस घर में तुम्हें वो इज्जत और मान दिया जाए जिसकी तुम हकदार हो, उस घर में रहने वाले लोग तुम्हारी कद्र करे, तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही दिल से अपनाए। तुम वो आजाद पंछी हो जो आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए बनी है। ससुराल नाम के पिंजरे में हम तुम्हें कभी कैद नहीं होने देंगे। तुम्हारी हंसी, खुशी, आजादी कभी तुमसे छीनने नहीं देंगे, कभी भी नहीं।
आहाना पहले गंभीर थी पर बोलते हुए भावुक हो गई। इतने कम वक्त में उसने बहुत कुछ देख लिया था और अपनी बहन को वैसी जिंदगी कभी नहीं देना चाहती थी जैसी जिंदगी अभी वो जी रही थी। आहाना की बातें सुनकर अंतरा भी भावुक हो गई थी। महसूस कर पा रही थी वो उस दर्द, उदासी और दुख को जिसे आहाना ने अपने दिल में कहीं गहराई में छुपाया हुआ था। अंतरा आगे बढ़कर उसके गले से लग गई। आहाना ने भी मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखों को मूंद लिया। शब्द मौन थे पर दोनों ही एक दूसरे के प्रेम को महसूस कर रही थी जो उनके दिल को सुकून पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ अक्षय बेड पर लेटा बांह को मोड़कर सर के नीचे रखे एकटक सीलिंग को घूर रहा था। चेहरा सपाट था पर मन में बहुत कुछ चल रहा था उसके। अगली सुबह आहाना कमरे में आई तो अक्षय को सिरहाने से टेक लगाए बैठे पाया। आंखों में हल्का गुलाबीपन झलक रहा था और ध्यान शायद कहीं और था उसका, इसलिए आहाना के आने का उसे एहसास न हुआ। आहाना उसे यूं बैठे देखकर चौंक गई, फिर नजर उसकी गुलाबी आंखों पर पड़ी और माथे पर सिलवटें उभर आईं। अक्षय जी, हाँ हाँ। आहाना की आवाज़ कानों में पड़ने पर अक्षय चौंकते हुए होश में लौटा और अचकचाते हुए निगाहें आहाना की ओर उठाई। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर आहाना और ज्यादा परेशान हो गई और चिंतित स्वर में सवाल किया।